आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं आसिया मेमुना। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म और बीजेपी के सीनियर लीडर नरेंद्र मोदी आज मेरठ में एक रैली से खिताब करके उत्तर प्रदेश में चुनाव मुहिम का आगाज करेंगे। अरुणाचल प्रदेश में कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख के बाद बीजेपी के 10 अरकानी असेंबली को बिला मुकाबला मुंतखब करार दिया गया है। ईडी ने आबकारी पॉलिसी घपले से वाबस्ता काले धन को जायज बनाने के मामले में दिल्ली के वजीर कैलाश गहलोत से पूछताछ की है। दिल्ली पुलिस ने गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम एक्ट यूएपीए मामले में न्यूज क्लिक और उसके बानी प्रबीर पुरकायस के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। भारतीय मौसमियात महकमे ने शिमाल मशरिकी भारत के इलाकों में कल तक शदीद बारिश जारी रहने की पेशगोई की है। और आईपीएल क्रिकेट में कल रात लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स ने पंजाब किंग्स को 21 रन से शिकस्त दी। अब खबरें तफसील से। बीजेपी के सीनियर लीडर और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज मेरठ में एक रैली से खिताब करके उत्तर प्रदेश में चुनाव मुहिम का आगाज करेंगे। बीजेपी ने मेरठ लोकसभा सीट से टीवी सीरियल रामायण से मशहूर हुए अदाकार अरुण गोविल को मैदान में उतारा है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय लोकदल के सदर जयंत चौधरी और बीजेपी के कई दीगर रहनुमा इस मौके पर मौजूद होंगे। उत्तर प्रदेश में 7 मरहलों में लोकसभा इंतखाबात कराए जा रहे हैं। बीजेपी की कयादत वाली एनडीए ने एतमाद जाहिर किया है कि वह मरकज में दोबारा इकतदार में आएगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश अहम रियासत साबित होगी क्योंकि यहां लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं। महाराष्ट्र में 5 लोकसभा सीटों के लिए इंतखाबी मैदान में कुल 97 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं, जिसके लिए वोटिंग 19 अप्रैल को होगी। कल पर्चे नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख थी। नागपुर, चंद्रपुर, रामटेक, भंडारा, गोंडिया और गढ़चिरौली चिमूर पर मुश्तमिल 5 सीटें रियासत के विदर्भ खित्ते में हैं। सिर्फ रामटेक सीट पर ही अहम हरीफ कांग्रेस और वजीर आला एकनाथ शिंदे की कयादत वाली शिवसेना के दरमियान मुकाबला होगा। बाकी 4 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने होंगी। इंतखाबी मैदान में 13 उम्मीदवार गैर तस्लीम शुदा पार्टियों से हैं, जबकि 12 आजाद उम्मीदवार हैं। कांग्रेस की रश्मि बारवे के पर्चे नामजदगी दाखिल करने के एक दिन बाद जांच के दौरान उनके कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट को कलदम करार दिया गया, जिसके बाद उनकी उम्मीदवारी मुस्तरद कर दी गई। नागपुर में जहां 26 उम्मीदवारों को पर्चों की जांच में सही पाया गया, वहां मरकजी वजीर और बीजेपी के सरकर्दा रहनुमा नितिन गडकरी और कांग्रेस के मौजूदा रुकन असेंबली विकास ठाकरे के दरमियान असल मुकाबला होगा। भंडारा गोंडिया में बीजेपी के मौजूदा रुकन पार्लियामेंट सुनील मेंडे कांग्रेस के प्रशांत पटवाले से मुकाबला करेंगे। 4 उम्मीदवारों के पर्चे नामजदगी वापस लेने के बाद यहां कुल 18 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। गढ़चिरौली चिमोर में बीजेपी के मौजूदा रुकन पार्लियामेंट अशोक नेते और कांग्रेस के किशन नामदेव आमने सामने होंगे, जबकि बीएसपी के योगेश गोनाडे तीसरे उम्मीदवार हैं। आसाम में पहले मरहले के तहत लोकसभा की 5 सीटों पर होने वाले इंतखाबात में 35 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। कल जोरहाट सीट से 1 उम्मीदवार ने अपना नाम वापस ले लिया। बीजेपी तमाम 5 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस ने 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, जबकि वो डिब्रूगढ़ पार्लिमानी हल्के में असम जाटिया परिषद को हिमायत दे रही है। बीजेपी की तरफ से मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल, एमपी प्रधान बरुआ कामाख्या प्रसाद ताशा और तपन कुमार गोगोई रुकन असेंबली रंजीत दत्ता चुनाव मैदान में हैं। कांग्रेस एमपी गौरव गोगोई, साबिक एमएलए रोसिलिना टिर्की और उदय शंकर हजारिका इंतखाबी मैदान में हैं। असम जातीय परिषद के सदर लूरिन ज्योति गोगोई डिब्रूगढ़ सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी के 10 अरकाने असेंबली बिला मुकाबला मुंतखब करार दिए गए हैं। रियासत में कल उम्मीदवारों के जरिए नाम वापस लेने की आखिरी तारीख थी। अरुणाचल प्रदेश में वाहिद मरहले के तहत 19 अप्रैल को लोकसभा की 2 सीटों और 60 असेंबली हलकों के लिए एक साथ इंतखाबात कराए जा रहे हैं। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
60 रुकनी अरुणाचल प्रदेश कानून साज असम्बली में बीजेपी उम्मीदवारों के जरिए 10 सीटों पर बिला मुकाबला मुंतखब होने के बाद अब बकिया 50 असम्बली हलकों के लिए पोलिंग होगी। 6 असम्बली हलकों में एक ही पर्चे नामजदी दाखिल किया गया, जबकि 4 दिगर असम्बली हलकों में अपोजिशन उम्मीदवारों ने अपने पर्चे वापस ले लिए। वजीर आला पेमा खांडू, नायब वजीर आला चावना मीन और ईटानगर के एमएलए टेची कासो उन अहम उम्मीदवारों में शामिल हैं जिन्हें बिला मुकाबला मुंतखब करार दिया गया है। बीजेपी ने तमाम 60 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी सिर्फ 13 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। लोकसभा की 2 सीटों के लिए 14 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। अरुणाचल वेस्ट सीट के लिए 8 उम्मीदवार जबकि अरुणाचल ईस्ट सीट के लिए 6 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। ईटानगर से राकेश डोली की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटों के लिए 4 मरहलों में वोट डाले जाएंगे। पहले मरहले के तहत 6 सीटों पर होने वाले इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल मुकम्मल हो चुका है। दूसरे मरहले के तहत 7 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए नामजदगी के पर्चे भरे जा रहे हैं। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटों में से 25 सीटों पर होने वाले मुकाबले की तस्वीर तकरीबन वाजे हो चुकी है। बीजेपी ने तमाम सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने अब तक 3 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी ने 1 सीट समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ी है। बीजेपी ने 11 सीटों पर नए चेहरे को मौका दिया है, जबकि कांग्रेस ने 18 सीटों पर नए उम्मीदवारों को खड़ा किया है। लोकसभा की 7 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुकाबला दोनों पार्टियों के नए उम्मीदवारों के दरमियान होगा। भारतीय जनता पार्टी ने 6 खवातीन को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस ने अब तक 1 खातून उम्मीदवार को इंतखाबी मैदान में उतारा है। मध्य प्रदेश में पहले मरहले के तहत 6 सीटों पर होने वाले चुनाव में तकरीबन 1,12,00,000 राय दहिंदगान अपने नुमाइंदों का इंतखाब करेंगे। दूसरे मरहले के तहत 7 सीटों पर होने वाले चुनाव में 1,03,00,000 से ज्यादा वोटर्स अपने लीडरों का इंतखाब करेंगे। इसी तरह तीसरे मरहले के तहत 8 लोकसभा सीटों के लिए 1,60,00,000 राय दहिंदगान अपने हक की रायदही का इस्तेमाल करेंगे, जबकि चौथे और आखिरी मरहले के तहत 1,50,000,000 से ज्यादा वोटर्स 8 लोकसभा सीटों के लिए अपना वोट डालेंगे। भोपाल से संजीव शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार।
ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने दिल्ली के ट्रांसपोर्ट के वजीर और आम आदमी पार्टी के लीडर कैलाश गहलोत से दिल्ली आबकारी पॉलिसी घपले मामले से वाबस्ता मुबैना कालेधन को जायज बनाने के मामले में कल 5 घंटे तक पूछताछ की है। पूछताछ के बाद ईडी के दफ्तर से बाहर निकलते हुए जनाब गहलोत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने एजेंसी के तमाम सवालों के जवाब दिए और वो आगे भी तहकीकात में तआवुन करते रहेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि उन्हें यह दूसरा समन मिला था और वो इससे पहले 1 माह कबल दिल्ली असेंबली के जारी बजट इजलास की वजह से हाजिर नहीं हो सके थे। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने अलकेमिस्ट ग्रुप से मुतालिक 29 करोड़ रुपए से ज्यादा किए मनकूला और गैर मनकूला इमलाक को आरजी तौर पर कुर्क कर लिया है। कुर्क असासों में एक बीच किंग एयर C90A तैयारा और हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में वाकई फ्लैट्स और जमीन शामिल है। ईडी ने कहा कि अलकेमिस्ट ग्रुप के सरबराह ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के साबिक राज्यसभा रुकन कंवरदीप सिंह हैं। ईडी ने सीबीआई लखनऊ और कोलकाता पुलिस की जानिब से बहुत से अफराद और अलकेमिस्ट ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ दर्ज एफआईआर की बुनियाद पर अपनी तहकीकात शुरू की थी। तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि अलकेमिस्ट ग्रुप ने अपनी कंपनियों के सरमायाकारों और मुतासरीन से ज्यादा मुनाफा और फ्लैट और मकानात देने के झूठे वादे करके तकरीबन 1,800 करोड़ रुपए की रकम जमा की है। दिल्ली पुलिस के खसूसी सेल ने गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम एक्ट यूएपीए मामले में न्यूज क्लिक के बानी और एडिटर प्रबीर پرکایست کے خلاف چارج شیٹ داخل کی ہے. الزامات ہیں کہ نیوز پورٹل نیوز کلک نے چین کے حق میں پروپیگنڈا کرنے کے لیے فنڈز حاصل کیے. حکام کے مطابق یہ چارج شیٹ تقریباً 9000 صفحات پر مشتمل ہے, جس میں تحقیقات کے دوران مارے گئے کئی چھاپوں کے دوران حاصل کیے گئے 480 الیکٹرانک آلات سے متعلق معلومات درج ہیں. چارج شیٹ میں پرکایس کے خلاف ان الزامات کا بھی ذکر ہے جس میں انہوں نے کشمیر اور اروناچل پردیش کو بھارت کا حصہ نہیں قرار دیا ہے. دلی کی پٹیالہ ہاؤس کورٹ اس معاملے کی اگلی سماعت اگلے مہینے کی 16 تاریخ کو کرے گی. دلی پولیس نے پچھلے سال 3 اکتوبر کو امریکہ کے راستے چین سے غیر قانونی فنڈز وصول کرنے کے الزام میں نیوز کلک کے بانی پربیر پرکایست کو ایچ آر ہیڈ امت چکرورتی کے ہمراہ گرفتار کیا تھا. بھارت کے محکمہ موسمیات نے اروناچل پردیش, آسام, میگھالیہ, ناگالینڈ, منی پور, میزورم اور تریپورہ میں پیر کے روز تک موسلادھار بارش کی پیشگوئی کی ہے. محکمہ موسمیات نے آج اروناچل پردیش, آسام اور میگھالیہ میں زبردست بارش کے امکان کا اظہار کیا ہے. محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق شمال مشرقی بھارت, ذیلی ہمالیائی, مغربی بنگال اور سکم میں 5 اپریل تک ہلکی بارش اور گرج چمک کا امکان ہے. ساتھ ہی محکمہ موسمیات نے اڈیشہ, مغربی بنگال کے گنگا کے ترائی والے علاقوں, جھارکھنڈ, مشرقی مدھیہ پردیش, وسیع مہاراشٹر, مراٹھواڑہ, ودربھ اور چھتیس گڑھ میں آج ہلکی سے اوسط درجے کی بارش کی پیشگوئی کی ہے. دنیا بھر میں آج ایسٹر کا تہوار منایا جا رہا ہے. یہ تہوار اس عقیدے کا مظہر ہے کہ حضرت عیسیٰ کو صلیب پر چڑھائے جانے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا گیا. ملک بھر میں آدھی رات کے بعد گرجا گھروں میں ایسٹر دعاؤں کا اہتمام کیا گیا. اس دوران نئی شروعات اور موسم بہار کی آمد کے موقع پر خوشیاں منائی گئیں. لوگوں نے انڈوں کو رنگنے, کیک بنانے اور انڈوں کو سجانے جیسی روایتی رسومات انجام دیں. یہ روایات صلیب پر حضرت عیسیٰ کی موت اور دوبارہ زندہ کیے جانے کی نشاندہی کرتی ہے. بھارتی بحریہ کی جانب سے صومالی قزاقوں کے قبضے سے چھڑائے جانے کے بعد 23 پاکستانی شہریوں نے بھارت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے انڈیا زندہ باد کے نعرے لگائے. بھارتی بحریہ نے 29 مارچ کو بحیرہ عرب میں ایک پرخطر آپریشن کے دوران ان افراد کو 9 مسلح قزاقوں سے آزاد کرایا. اس کے بعد ماہرین کی ٹیموں نے الکمبار ماہی گیری کشتی کو سینیٹائز کیا اور اس کے سمندر میں قابل استعمال ہونے کی جانچ کی. آئی پی ایل کرکٹ میں کل رات لکھنؤ کے اٹل بہاری واجپئی ایکانا کرکٹ اسٹیڈیم میں لکھنؤ سپر جائنٹس نے پنجاب کنگز کو 21 رن سے ہرا دیا. جیت کے لیے 200 رن کے نشانے کا پیچھا کرتے ہوئے پنجاب کنگز مقررہ 20 اوورز میں 5 وکٹ پر 178 رن ہی بنا سکی. پنجاب کنگز کی طرف سے کپتان شیکھر دھون نے سب سے زیادہ 70 رن بنائے. اس کے بعد جانی بیرسٹو نے 42 رن بنائے. لکھنؤ سپر جائنٹس کی طرف سے میانک یادو نے 3 وکٹ حاصل کیے. اس سے پہلے لکھنؤ سپر جائنٹس نے ٹاس جیتا اور پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا. اس نے مقررہ 20 اوورز میں 8 وکٹ پر 199 رن بنائے. یہ تھی خبریں. اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں ضمیر رضوی.
شکریہ آسیہ. راجدھانی دلی سے آج شائع ہونے والے زیادہ تر اردو اخبارات نے مختلف خبروں کو نمایاں جگہ دی ہے. روزنامہ راشٹریہ سہارا نے سابق وزرائے اعظم چرن سنگھ اور نرسمہ راؤ, بہار کے سابق وزیر اعلی کرپوری ٹھاکر اور مشہور زرعی سائنسداں ایم ایس سوامی ناتھن کو بعد از مرگ بھارت رتن سے سرفراز کیے جانے کی خبر کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے. اخبار کے مطابق سابق نائب وزیر اعظم ایل کے اڈوانی کو بھی آج بھارت رتن سے نوازا جائے گا. روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے بی جے پی کی انتخابی منشور کمیٹی کی تشکیل سے متعلق خبر کو صفحہ اول پر جگہ دی ہے. اخبار نے لکھا ہے کہ 27 رکنی اس کمیٹی کی صدارت وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کریں گے. روزنامہ ملاپ نے بحیرہ عرب میں بھارتی بحریہ کے اس آپریشن کی خبر کو نمایاں جگہ دی ہے جس میں بحریہ نے 12 گھنٹے طویل کارروائی کے بعد قزاقوں کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا. اخبار نے لکھا ہے کہ اس کارروائی سے بحری قزاقی کا مقابلہ کرنے اور خطے میں سمندری سرگرمیوں کی حفاظت یقینی بنانے کے بھارتی بحریہ کے عزم کی عکاسی ہوتی ہے.
آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم اور بی جے پی کے سینئر لیڈر نریندر مودی آج میرٹھ میں ایک ریلی سے خطاب کر کے اتر پردیش میں چناؤ مہم کا آغاز کریں گے. اروناچل پردیش میں کاغذات نامزدگی واپس لینے کی آخری تاریخ کے بعد بی جے پی کے 10 ارکان اسمبلی کو بلا مقابلہ منتخب قرار دیا گیا ہے. ای ڈی نے آبکاری پالیسی گھپلے سے وابستہ کالے دھن کو جائز بنانے کے معاملے میں دلی کے وزیر کیلاش گہلوت سے پوچھ تاچھ کی ہے. دلی پولیس نے غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام ایکٹ یو اے پی اے معاملے میں نیوز کلک اور اس کے بانی پربیر پرکایست کے خلاف چارج شیٹ دائر کی ہے. بھارتی موسمیات محکمے نے شمال مشرقی بھارت کے علاقوں میں کل تک شدید بارش جاری رہنے کی پیشگوئی کی ہے. اور آئی پی ایل کرکٹ میں کل رات لکھنؤ میں لکھنؤ سپر جائنٹس نے پنجاب کنگز کو 21 رن سے شکست دی. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.